वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रेरिवजाकाचार्य अष्ट सरस्वत कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल गोरिस टू द असेंबल डिवोटीज। ऑल गोरिस टू द असेंबल डिवोटीज। ऑल गोरिस टू द असेंबल डिवोटीज। ऑल गोरिस टू गुरु एंड गौरांग। सब लोग हमारे पीछे कृपया आवृत्ति कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के ऊपर कुछ चर्चाएं करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 25। ध्यानेन आत्मानि पश्यन्ति केचित् आत्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोग कर्मयोगेन च अपरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। केचिदात्मनम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ ध्यानेन ध्यान के द्वारा आत्माने अपने भीतर पश्यन्ति देखते हैं के चित कुछ लोग आत्मानम परमात्मा को आत्माना मन से अन्य लोग सांख्येन दार्शनिक विवेचना द्वारा योगेन योग पद्धति के द्वारा कर्मयोगेन निष्काम कर्म के द्वारा च भी अपरे अन्य। अनुवाद कुछ लोग परमात्मा के ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तात्पर्य भगवान अर्जुन को बताते कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज की प्रश्न है बद्ध जीव का दो श्रेणियां है। जो लोग नास्तिक अज्ञेयवादी तथा संशयवादी है वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है, किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है वे आत्मदर्शी भक्त दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं उनकी भी गणना नास्तिक एवं अज्ञेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्द में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति से भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा का रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी है जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, उन्हें श्रद्धावान की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत की विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझते हैं समझने में समर्थ होते हैं तो वे वो भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वो 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमश कृष्ण भावना मुक्त की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव में कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, उन्हें कृष्ण भावना मृत की भक्ति में पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और वो जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान की अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी है जो हट योग द्वारा अपने बालक जैसे क्रियाकलाप द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कृते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि लक्ष्य क्या है। यहां पर भगवान बता रहे हैं लक्ष्य है भगवान को समझना और भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करके भगवान तक वापस जाना है, लेकिन उसके लिए अलग अलग रास्ता बताया गया है, पहुंचने का अलग अलग प्रक्रिया बताया गया है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान से जुड़ने का चार प्रक्रिया के बारे में वर्णन है, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ऐसे ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तो अलग अलग प्रक्रिया बताया गया है। जैसे ही आपको समझो दिल्ली जाना है तो आप विमान में जा सकते हैं, हवाई जहाज, ट्रेन में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, चार चक्का की वाहन में जा सकते हैं, दो चक्का की वाहन से जा सकते हैं, साइकिल में जा सकते हैं, बाईसाइकिल बोलते हैं ना, और पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन आप सही रास्ता में जाना चाहिए। अभी समझो आप, हम बॉम्बे में है तो हमारा उत्तर दिशा में है दिल्ली, और आप सब जाएंगे लेकिन दक्षिण दिशा में जाएंगे, आप दिल्ली के जगह कहां पहुंच जाएंगे, मद्रास पहुंच जाएंगे, चेन्नई पहुंच जाएंगे, बेंगलोर पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि भगवान अलग अलग प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन वो प्रक्रिया ही आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे ही यहां पर भगवान, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, संसार में अलग अलग क्षमता योग्यता के लोग हैं, उसके अनुसार ही भगवान सबका व्यवस्था किए हैं। जैसे वेद में भी भगवान को जानने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए और भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करने के लिए तीन प्रक्रिया बताई गई है, पहले कर्मकांड, फिर ज्ञान कांड, फिर उपासना कांड। उपासना कांड सबसे उत्तम और सर्वोत्कृष्ट बताया गया है, तो उसका ही क्यों वर्णन नहीं है उसमें, बाकी दो का क्यों वर्णन है। तो ये जो वेद लिखा गया है सभी के कल्याण करने के लिए, तो ये संसार में हमेशा अलग अलग क्षमता योग्यता के लोग रहते हैं, इसके लिए भगवान सबका व्यवस्था करते हैं। अभी समझो आप विमान में भी दिल्ली में जाना चाहते हैं, उसमें भी होता है इकोनॉमिक क्लास होता है, डिलक्स क्लास होता है, अलग अलग होता है। ट्रेन में भी जाएंगे ना, उसमें पहला जनरल होता है, स्लीपर होता है, एसी में भी थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट क्लास एसी। अभी अलग अलग लोगों, लक्ष्य तो दिल्ली तक ट्रेन लेके जाएगा, लेकिन आपका कितना क्षमता है उसके अनुसार आप जा सकते हैं, सरकार की ऐसा व्यवस्था है। तो भगवान की भी ऐसा ही व्यवस्था है। ये सब भगवान का क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट बोलते हैं ना इंग्लिश में, ये भगवान जो पद्धति बनाया है लोग सब उसको ही कॉपी पेस्ट करते हैं, भगवान की ऐसा व्यवस्था है। अभी बस में भी जाएंगे, आपका पुश बैग होता है, क्या बोलते हैं, और एक बैठ सकते हैं, स्लीपर होता है, सो के जा सकते हैं, सबका अलग अलग कीमत चुकाना पड़ेगा। लेकिन बस अगर दिल्ली जा रहे बैठ गए तो ये हो जाएगा। अभी आपको दिल्ली जाना है, उल्टा ट्रेन में बैठ जाएंगे, उल्टा अभी टिकट लिए वहां से दिल्ली का, लेकिन बैठ गए किस में, चेन्नई वाले ट्रेन में, तो क्या हो जाएगा, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, अलग दिशा में पहुंच जाएंगे। तो भगवान बता रहे हैं यहां पे कि लक्ष्य है परमात्मा को जानना, भगवान तक पहुंचना है, लेकिन उसके लिए अलग अलग प्रक्रिया है। तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रक्रिया का अवलंबन करते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रक्रिया है भगवान यहां पर बता रहे हैं। एक बोलते हैं कुछ लोग भगवान को ध्यान द्वारा प्राप्त करने का चेष्टा करते हैं, और कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करके चेष्टा करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं अष्टांग योग द्वारा, और कुछ निष्काम काम द्वारा भगवान को पहुंचने का चेष्टा करते हैं। तो भारत में एक प्रसिद्ध है यथा मत तथा पथ, कुछ भी करो और आप लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, ये ऐसा नहीं है। भगवत गीता में भगवान स्पष्टीकरण कर रहे हैं, जो देवता लोग को पूजा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो पितरों को पूजा करेगा जो पितर लोग को जाएगा, और जो मनुष्य को पूजा करेगा इस जगत में रह जाएगा, लेकिन जो मेरा पूजा करेगा मेरा धाम को जाएगा। प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का, यान्ति देवव्रता देवान पितृन जाति पितृद्वता भूतानि जाति भूतेजा मद्भक्तो यान्ति मामपि। तो उसमें भगवान बता रहे हैं देवता लोक का जो उपासक है वो देवता लोक को जाते हैं, जो समझो मनुष्यों का पूजा करते हैं इस जगत में रह जाते हैं, जो भूत प्रेत लोग का पूजा करते हैं वो नरक में जाते हैं, और जो मेरा पूजा करते हैं मेरा आते हैं। तो इसका अर्थ है जिसका उपासना करेंगे उनको ही जाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं है देवताओं की अपमान करना है। सवेरे हमारा एक चर्चा का विषय वस्तु था, हमारा परम पूज्य अमीय बिलास स्वामी महाराज भक्ति रसामृत सिंह से बता रहे थे, उसमें एक हमारा जब भक्ति का 64 अंग बताया गया है, उसमें पहले बताया गया 10 करना चाहिए और बाद में बताया गया 10 नहीं करना चाहिए। अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो ये जो 20 जो विषय वस्तु है वो मौलिक ज्ञान है, प्राथमिक है। तो उसमें बताया गया कि देवता लोक का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वो सम्माननीय लोग होते हैं तो उनको अपमान करने का कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन उनको स्वतंत्र ईश्वर के भाव से भी उनको उपासना किया नहीं जा सकता है। तो उनको एक भगवान का, उन लोग भी कर्म मिश्रित भक्त है, इसके लिए उनको भगवान ने अपना जो परिचालना विभाग में, ये जो ब्रह्मांड का परिचालना का विभाग में बहुत बड़े बड़े उत्तरदायित्व दिए हुए हैं, जैसा वृष्टि का जो परिचालना का विभाग का अधिकारी है इंद्रदेव, ऐसे उनको बहुत बड़े बड़े परिचालना विभाग का भगवान ने अधिकारी बनाया है। तो उनको सम्मान किया जा सकता है, उनसे आशीर्वाद लिया जा सकता है, लेकिन स्वतंत्र ईश्वर का हिसाब से उनका पूजा नहीं किया जाता है। तो हमारा श्रीमद् भागवतम में भी प्रमाण मिलता है, कथा आती है, गोपियां भी माता कात्यायन का पूजा किए थे, एक महीना तक उपवास रखे थे, उसको कात्यायन व्रत बोलते हैं। वो अभी मार्गशीर्ष मास गया, मार्ग मास मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेके वो पूर्णिमा तक, तो एक महीने का वो व्रत होता है, कात्यायनी व्रत बोलते हैं। उन्होंने भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया जा सकता है। तो भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए तो देवी देवता का आशीर्वाद लिया जा सकता है। ऐसे ही भागवत में वर्णन आता है, जो माता क्या बोलते रुक्मिणी थी, वो भी देवी का उपासना की, किसके लिए कि कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। तो उनको सम्मान किया जा सकता है, उनसे भगवान के भक्ति में उन्नत के लिए आशीर्वाद लिया जा सकता है, लेकिन स्वतंत्र ईश्वर के हिसाब से उपासना नहीं किया जा सकता है, ना कि उनको अपमान भी किया जा सकता है। और भारत में इतना मत है कि पूछिए मत। भारत में एक प्रसिद्ध जो सिद्धांत है, चार बाग का सिद्धांत बोलते हैं, उन्हें वो बताते हैं, यावत ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा यावत जीवत सुखम जीवत भस्मीभूत स देहस्य कुतो पुनरागमन भवत। और बोलते हैं ऋण भी लीजिए लेकिन घी पीजिए, ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा ऋण लेके भी घी पियो, और बोलते हैं भस्मीभूत स देहस्य कुतो पुनरागमन भवत, मरने के बाद शरीर जला देते तो पुनर्जन्म किसने देखा है। तो ऐसा भारत में इतना मत है, और सब लोग कहते हैं कि हमारा पंथ को अपनाइए और आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यहां पर भगवान इसको विरोध कर रहे हैं। और भी एक भगवद गीता में श्लोक में बताया गया है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्ता अध गच्छन्ति तामसा। ऐसा नहीं है खुशी भी उपासना करेंगे तो आपका फल एक ही प्रकार का प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। तो उपासना का अनुसार ही आपको फल प्राप्त होगा। और आजकल अज्ञानता इतना छा गई है यहाँ पर, जय श्री श्री गौर निताई भगवान की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान महाराज की जय। तो मंदिर का पट फिर 8:30 बजे खुलेगा, ठाकुर जी का आरती होगा। अभी केवल 20 मिनट के लिए भगवान को भोग अर्पण करने के लिए मंदिर बंद किया गया है। तो जो लोग फिर से भगवान का दर्शन चाहते हैं, आरती देखना चाहते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं और भगवान के बारे में कुछ चर्चा चल रही है उसमें भाग ले सकते हैं। तो आजकल अज्ञान इतना बढ़ गया है, लोग ज्ञान कहां से प्राप्त होता है वो भी पता नहीं। ज्ञान जो प्रामाणिक स्रोत है हमारा वैदिक शास्त्र, लेकिन अलग अलग मत है। और एक आदमी बोलता है तो जहां भीड़ है तो लोग उसका ही अनुसरण करते हैं। अज्ञान क्या है, एक मैं आपको चुटकुला सुनाता हूं बीरबल अकबर का। तो ऐसे ही अकबर ने पूछा बीरबल को, बीरबल जी अज्ञान क्या है? तो बीरबल जी बोले मैं 15 दिन के बाद उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं अभी तीर्थाटन के लिए जा रहा हूं, तीर्थाटन से वापस आऊंगा, आपको बताऊंगा कि अज्ञान क्या है। तो उन्होंने बोले मैं थोड़ा सामान फामान मुझे तीर्थाटन के लिए चाहिए, तो मैं कुछ दिन उसका सामान का व्यवस्था करूंगा, 4-5 दिन लगेगा, फिर मैं 10 दिन तीर्थाटन करके आऊंगा। बोला ठीक है जाइए, आने के बाद मेरा उत्तर दीजिएगा। तो उन्होंने एक मोची के पास गए, मोची को बोले मुझे एक पादुका बनाना है, पादुका समझे चप्पल जिसको बोलते हैं, बोला पादुका बनाना है। बोला कम से कम 6 इंच चौड़ा होना चाहिए और 1 फुट लंबा होना चाहिए, और बोला उसमें बहुत हीरा मोती माणिक में बनाना है, जेवरात से वो जूता को बनाना है। तो मोची बोला कम से कम 3 दिन मुझे लगेगा बनाने में, आपका जो ऑर्डर है उसके लिए 3 दिन लगेगा। बोला ठीक है मैं 3रा दिन के बाद आऊंगा। 4था दिन गए तो वो पादुका तैयार था, ले लिए। वो बोले मैं पादुका बनाया बोल के किसी को बताना नहीं है, मैं मंत्री हूं, अगर किसी को बता दोगे तो तुमको फांसी में चढ़ा दूंगा। बोला महाराज किसी को नहीं बताऊंगा। तो पादुका लिए और रात को 2 बजे गए, और उनका जो मस्जिद था, मस्जिद का जो दरवाजा में एक जूता छोड़ दिए और चले गए, और थोड़ा गुप्त रूप में देखे और देख रहे थे क्या हो रहा है बोल के। तो जैसे ही 4 बजे आया, उनका मौलाना जी आए अनाज पढ़ने के लिए, और जैसे ही आए तो देखे जूता दिखाई दिया, एक उसमें सब हीरा मोती माणिक जड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपना अज्ञानता से सोचा ये जरूर अल्लाह का होगा, नहीं तो इतना कीमती इतना बड़ा जूता किसका हो सकता है। तो उन्होंने सोचा शायद वो जल्दीबाजी में जाते जाते एक छोड़ गए, एक पहन के चले गए, ये उनका ही होगा। और जैसे ही वो लेके गए और जितना लोग आए उनको बोलने लगे अल्लाह का एक पादुका छूट गया है, तो उसको सम्मान करके सब उनको नवाने लगे, उसको चाटने लगे, सब सर पे रखने लगे। तो ये बात है ना पूरा राज्य में फैल गया। तो जितना समझो उनका अनुजाई लोग थे, सब लोग आने लगे, उसको चाटने लगे, सर नवाने लगे। फिर अकबर को पता चला कि अल्लाह ने एक जूता छोड़ दिया है, एक जूता पादुका रह गया है, तो उन्होंने भी मंगाए, फिर उन्होंने भी उसको नमन किया, फिर उसको भी वो चाटने लगे, उनका जो पद्धति होता है चाटने लगे, फिर सर पे लगाने लगे। ऐसा 10 दिन तक प्रक्रिया चलती रहा। फिर 10 दिन के बाद बीरबल जी आए, जाते ही अकबर की दरबार में बोले, बोले महाराज महाराज मेरा एक चोरी हो गया। क्या चोरी हो गया? बोला मेरा दादाजी का एक जूता चोरी हो गया। बोला तुम्हारा दादाजी का एक जूता चोरी हो गया? बोला हाँ, वो घर में से एक जूता है, एक जूता चोरी हो गया है। बोला ठीक है उसको मंगाइए। तो दूसरा जूता लेके आए, वो देखे कि वो इसका जोड़ी का है। तो वो बादशाह ने फिर ऐसा
के मुंह कर दिए। अरे हमने सोचे थे कि ये किसी अल्लाह का, ये तो उनका दादाजी का जूता है, हमने उसको नमन करके सब चाट रहे थे। तो इसको अज्ञान बोलते हैं और भेड़ी चाल बोलते हैं। एक आदमी करेगा उसके सामने सब लोग करेगा, यही अज्ञान है। तो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में गए थे ये करने के लिए, वृंदावन भगवान का लीला स्थली दर्शन करने के लिए। उनका साथ उनका एक निजी सेवक को लेके गए थे, पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं ना अंग्रेजी भाषा में, उसको हिंदी भाषा में निजी सेवक बोलते हैं। उनका नाम था बलदेव भट्टाचार्य, तो उसको साथ में लेके गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाएंगे, परिक्रमा मार्ग में एक जगह है इमली ताला बोल के, ये वृक्ष है इमली ताला, इमली का वृक्ष है, वहां चैतन्य महाप्रभु बैठ के भजन करते थे। सवेरे चले जाते थे, ऐसा रहेगा तो लोग बहुत विश्रृंखला करते थे, तो उधर जाके बैठते थे, भजन करते थे 2 बजे तक दिन में, नाम कीर्तन करते थे, फिर वो कोई आया कुछ बुलाता था तो फिर जाके उसका घर में प्रसाद खाते थे। विशेष करके वो उच्च स्तर का ब्राह्मण होना चाहिए। तो वहां रात को एक अब्बा होगा, अब्बा चला एक कि भगवान कालिया कृष्ण फिर से जमुना में प्रकट हो गए हैं और कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। ऐसा थे तो सब लोग बोला हाँ अरे कालिया फिर से प्रकट हो गया और कालिया का फन में भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, उनका वो जो माथा पे जो मणि है नागमणि बहुत चमक रहा है, बहुत चमक रहा है, लोग देखने को सब भीड़ लगने लगे, बहुत लोग डेली जाके देखते थे रात को। तो बलदेव भट्टाचार्य ने बोला चैतन्य महाप्रभु को, मैं भी थोड़ा वो भगवान कृष्ण का ऊपर जो कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं ना उसको देखने के लिए जाना चाहता हूँ। चैतन्य और एक चाटा मारे, बोले कृष्ण का भी समझ कलयुग में प्रकट होते हैं, बोला ये अफवाह है, कृष्ण कलयुग में प्रकट होते नाम के रूप में, कहाँ पे कालिया के पे नृत्य कर रहे हैं। तो फिर 2 दिन के बाद पता चला, लोगों ने देखा तो वहां का क्या मछुआरे लोग वहां पर सब मच्छी पच्छी खाना मथुरा मंडल में वर्जित है, तो कुछ लोग चोरी से रात को मच्छी पकड़ रहे थे। तो पहला तो ऐसे लंठन होता ना, लंठन बत्ती में तेल में एक बत्ती जलाते थे ओ और मच्छी पकड़ते थे। तो लोगों ने ये जो तेल का बत्ती था उसको कालिया नाग का मणि समझ लिया, और जो मच्छर जो मच्छी पकड़ते हैं उनको सोच लिया कि कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। तो बलदेव भट्टाचार्य के बोले कि नहीं नहीं महाप्रभु आप सही बता रहे थे, वो कोई भगवान कालिया के ऊपर नृत्य करने थे, कुछ जो धीवीर लोग वो जमुना में मच्छी पकड़ रहे थे वो लंठन जला के। तो ये बोलते अज्ञान और भेड़ी चाल। तो एक आदमी बोल दिया भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, तो सब लोग देखने लगे। बलभद्र भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु बोर्ड डांटे, बोला तुम विद्वान हो कैसा मूर्ख जैसा बात करते हो, तो बड़े बड़े पंडित लोग भी जैसे 1000 लोग एक चीज बोलेंगे ना तो उसमें भ्रमित आ गए। अभी क्या अज्ञानता हम देख रहे थे, अभी सब बोल रहे नया अभी न्यू ईयर 2020, अरे ये क्रिश्चियन लोग का 2000 साल है, कुछ गणना होती है, हमारा गौड़ियों वैष्णव लोग गौरव से गिनती करते हैं। तो ये जो 2020 है ना उसको बोलते हैं एडी और बीडी, अभी जो बोलते हैं आप देखेंगे 2020 एडी लिखा होता है और आप देखेंगे कुछ बीडी लिखा होगा। एडी का अर्थ है आफ्टर डिसेंडेंट ऑफ जीसस, तो 2020 जीसस क्राइस्ट का जन्म होके 2020 साल हो गया, जो 2020 है ना 2020 एडी बोलेगा तो 2000 साल आफ्टर डिसेंडेंट ऑफ जीसस। आप कुछ इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बीडी लिखा होगा, बोलेगा तो बिफोर डिसेंडेंट ऑफ जीसस, बीडी बोले जीसस का जन्म होने से पहले को उन लोग बीडी बोलते हैं, बिफोर डिसेंडेंट ऑफ जीसस। अभी एडी बोलेगा तो आफ्टर डिसेंडेंट ऑफ जीसस, तो 2020 एडी। और हमारा जो सनातन धर्म अवलंबी लोगों को पूछो तुम्हारा नया वर्ष क्या है, पता नहीं उनका, हमारा गणना है कुछ अलग प्रकार का, बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ फिर श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फिर चैत्र और फाल्गुन, ये गणना किसी को पता नहीं है। अरे तो सब अज्ञान है। दो हैप्पी न्यू ईयर 2020, तो मैं कुछ लोगों को डांटा, बोला तुम भी क्रिश्चियन हो गए क्या, वो क्रिश्चियन लोगों का नया साल, तुम्हारा नया साल है कब, पता नहीं, लोग सब बोल रहे हैं वो भी बोल रहा है, इसको बोलते हैं अज्ञानता। तो कुछ भी हम बोलते हैं उसको सही से ही हमको जानकारी होना चाहिए। तो ये सब अज्ञानता, इसके लिए एक लोग जहां भीड़ है और उधर 10,000 लोग आए हैं कथा में, कथा कौन कर रहा है क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, भीड़ है अच्छा हो रहा होगा, ये सब अज्ञान है। इसके लिए भगवान उसको यहां पर प्रामाणिक नहीं मान रहे हैं। और यहां पे प्रभुपाद ने कुछ तात्पर्य के अंदर कुछ बात बता रहे हैं। पहले बात बता रहे हैं जो अज्ञानवादी नास्तिक लोग के बारे में बता रहे हैं। ये जो आध्यात्मिक मार्ग वाले है ना, उसमें दो श्रेणियां है, एक है नास्तिक लोग, एक है आस्तिक लोग। नास्तिक लोग बोलेंगे तो जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो उसमें से प्रभुपाद यहां वर्णन करने रहे हैं मायावादी लोग, जो कि शंकराचार्य के अनुयायी है। शंकराचार्य ने एक सिद्धांत बोले ये जो भगवान है ना, वो एक ज्योतिर्पुंज है, परमात्मा एक ज्योतिर्पुंज है। तो इसमें किसी कारण विघटन हुआ, टूट गया, तो हम लोग सब आ गए और तीन गुणों के प्रभाव में आके हम अज्ञान में है। जब भी आपको ज्ञान हो जाएगा, संन्यास लेंगे, नर नारायण हो जाएगा। उसमें से जो बड़ा जो पुंज होता है, वही जो साकार ब्रह्म जब इस जगत में, निराकार ब्रह्म जब इस जगत में आता है तो साकार ब्रह्म के रूप में रूप धारण कर लेते हैं। तो उन लोग बोलते हो पंचदेव उपासक होते हैं। बोला ये जो साकार निराकार ब्रह्म साकार रूप में आए ना, तो बोलते वो पांच विभाग में विभक्त हुए। वो बोलते हैं विष्णु, शिवजी, दुर्गा, गणेश और सूर्यदेव, ये पंचदेव है उनका उपासना। बोले इन लोग सब बड़े आकार में विघटन हुए हैं और जब तक इस जगत में है गुणों के प्रभाव में रहते हैं, फिर उन लोग जाएंगे तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। और वो बोलते हैं भगवान का कोई हाथ नहीं, पैर नहीं, एक खाली ज्योतिर्पुंज है। और बोलते हैं आप कभी जाएंगे ना हरिद्वार, ऋषिकेश, सब देखे होंगे, जैसा शरीर छोड़ते हैं ना कोई, हम लोग कुछ सम्मान सूचक शब्द व्यवहार करते हैं, जैसा बाहर के लोग स्वर्गवासी हो बोलते हैं ना, उनका स्वर्गवास हो गया। ऐसे ही जैसे आप राम लोग का उपासक है ना, उन लोग का देखेंगे वो लिखा होगा साकेतवासी, साकेतवासी बाद में उसका नाम होगा। जैसे आप दक्षिण भारत में जाके सब लिखा होगा वैकुंठवासी, फिर वो जो दिगंबर आत्मा का नाम लिखा होगा। आप यहां से कोई महाराष्ट्र होगा तो पंडरपुर में जाइएगा, सब लिखा होगा हबफ वैकुंठवासी, फिर उसका नाम होगा हरिभक्ति परायण वैकुंठवासी, फिर उसका नाम होगा। तो ऐसा आप जाएंगे ओ हरिद्वार में, सब लिखा होगा ब्रह्मलीन अमुक, ब्रह्मलीन सम्मुख, सब ब्रह्मलीन लिखा होगा, फिर आगे उसका नाम लिखा। इसका उनका समझ है कि जाके वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो उनको उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण शंकराचार्य ने दिया लोगों को इसको समझाने के लिए। वो बोलते देखिए नदी है, नदी बहता है, जाके समुद्र में मिल जाता है, फिर नदी का पानी का अस्तित्व कहां रहा? अभी समझो मट्टी से बना घड़ा, घड़ा को तोड़ दिया, फिर वो मट्टी हो गया, फिर मट्टी का अस्तित्व कहां है? बोला ऐसे ही हम लोग जीवात्मा है, अभी जब हम जाके परमात्मा लीन में हो जाएंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये बोलते हैं नास्तिकवादी, बोलते हैं नास्तिकवाद जिसको भगवान का स्वरूप को नहीं मानते हैं। उसका दूसरा शब्द यहां पर प्रभुपाद ने जो व्यवहार किए हैं अज्ञानवादी, तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और दूसरा बात जो बता रहे हैं यहां पर भगवान, अलग अलग जो प्रक्रिया के बारे में, एक ध्यान है वो सबसे बोलते हैं उत्तम है। दूसरा एक शब्द यहां पर आया है जो है सांख्य योग। कुछ लोग सांख्य योग का अपना के भी भगवान को जानते हैं और ये करते हैं। तो ये एक हमारा भारत में एक प्रसिद्ध दर्शन है। दर्शन बोलेगा तो ज्ञान को समझने का सही सही तरीका, उसको दर्शन बोलते हैं। देखना दर्शन नहीं है, ऐसा भगवान गीता में बता रहे हैं, तद्विधि परिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ते त्याग्येन ज्ञानिनो तत्व दर्शिन। दर्शिन बोलेगा तो ज्ञानी लोग जो ठीक ठीक ढंग से उसको समझाए। तो ये है जो भगवान बारे में समझने के लिए क्रम में एक ज्ञान की प्रचलन है भारत में, उसको बोलते हैं षड दर्शन, छह प्रकार का दर्शन, छह प्रकार से समझने का प्रक्रिया। उसका जो पहला प्रक्रिया है उसको बोलते हैं पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा। तो हम आप लोग बहुत प्रसिद्ध कथा सुनते होंगे, जैसी करनी ऐसी भरनी, जैसी बोनी ऐसी काटनी। तो जैसी करनी ऐसी भरनी है, लेकिन भगवत गीता में भगवान बताए कर्माणि बाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म हेलो फल हेतु भूर्मा ते अस्तु अकर्माणि, ते फल भूर्ता अकर्माणि। बोला तुम कर्म करो, फल तुम्हारा हाथ में नहीं है, फल मैं दूंगा। फिर उसको ये कर्म मीमांसा से समझाया गया है उदाहरण देके। अभी जैसा समुद्र मंथन हुआ, आप भागवतम में कथा पढ़ेंगे समुद्र मंथन का, इसमें दो समूह भाग लिया था, एक देवता लोग थे एक थे असुर लोग थे। तो दोनों ने बहुत परिश्रम करके समुद्र को मंथन किया। देवता लोग जितना परिश्रम किए उनका दो गुना परिश्रम कौन किए? असुर। जब भी अमृत निकला तो किसको मिलना चाहिए था फल, किसको मिलना चाहिए था? दोनों का आधा आधा मिलना चाहिए था, नहीं तो। लेकिन मिला किसको? देवता लोग। क्यों? फल देने का फिर हाथ किस में? अगर जैसी करनी ऐसी भरनी तो देवता लोग तो अधिक परिश्रम किए, उनको अधिक मिलना चाहिए था, मिला उनको, बूंद भी हाथ में नहीं लगा। उसमें स्पष्ट किया गया है कि कर्म हम कर सकते हैं, फल देने का किसका हाथ में है? भगवान का हाथ में। भगवान लिए अमृत देवता लोग को पिला दिए, परिश्रम कौन किए? देवता लोग। तो हम परिश्रम करते हैं, फल देना भगवान का हाथ में। आप लोग जानते हैं व्यापार करने से लाभ होता है, सब लोगों को लाभ होता है, किस किस को क्षति भी हो जाता है। अरे व्यापार करने से लाभ होता था तो क्षति क्यों हुआ? तो व्यापार आप कर सकते हैं, लाभ और क्षति जो है भगवान का हाथ में, आप नहीं है। जैसा दंपति है संतान उत्पन्न करने के लिए चेष्टा कर सकता है, संतान होगा कि नहीं उसका हाथ में नहीं है, और पुत्र होगा कि पुत्री हो भाई वो भी हाथ में नहीं है। पुत्र चाहते हैं पुत्री हो जाता है, पुत्री चाहती है पुत्र हो जाता है। तो इसका मतलब है आप संतान उत्पन्न करने के लिए चेष्टा कर सकते हैं, होना नहीं होना आपका हाथ में नहीं है। बहुत लोगों को संतान नहीं होता है ना। अगर पति पत्नी का सौभाग्य से संबंध से अगर संतान उत्पन्न होता था तो फिर सबको होता था, किसी को क्यों नहीं होता है? और कोई लड़का चाहता है लड़की हो जाता है, लड़की चाहता है लड़का हो जाता है। तो इसका मतलब है फल आपका हाथ में नहीं है, आप कर्म करो तो फल आपका हाथ में है। तो कर्म मीमांसा यह बताया गया है कि फल देने वाले कोई भगवान है। तो फिर उसके बाद उसका अगला जो दर्शन है न्याय। न्याय बोलते आदमी कोई दुख नहीं चाहता है। ये दुख आता क्यों है? कोई दुख चाहता है, कोई बीमारी चाहता है, बुढ़ापा चाहता है, रोग चाहता है, कोई नहीं चाहता है, फिर भी जान जबरदस्ती उसको आ जाता है। बोले तो उन्होंने बोला ये दुख का कारण क्या है और सुख भी क्या है? तो बोला उसका फिर उन्होंने विश्लेषण किया। उसका जो तीसरा जो दर्शन है उसको वैशेषिक बोलते हैं। वैशेषिक में पूरा परमाणु से उनका विश्लेषण आरंभ हुआ तो पता चला कि इस जगत में सुख कुछ है नहीं, सुख जो है भ्रम है। क्योंकि हम जिसको सुख समझते हैं वो कुछ इंद्रियों का, इंद्रिय विषय वस्तु का स्पर्श है, और ये जो इंद्रिय विषय वस्तु से बना हुआ है वो सब परमाणु का संयोग है। परमाणु का संयोग समझते हैं, जैसा आंख रूप है, आप किसी भी रूप को देखो ना वो भी कुछ परमाणु का संयोग है, आप कुछ खाओ वो भी कुछ परमाणु का संयोग है। तो ये वस्तु में सुख नहीं है, जो सुख है वो भ्रम है। जैसा अभी समझो पानी में, गर्मी के दिन में पानी नहाने से बहुत क्या आनंद है, गर्मी चला गया। वही पानी को अभी ठंडी में दो वो क्या, अरे गर्म करके लाओ। इसका मतलब जल में आनंद नहीं है, जल में आनंद आता सब समय आनंद आता था, क्यों खाली एक समय विशेष समय में आनंद देता है? गर्मी में आनंद देता है, ठंडी में वो आपको ये हो जाता है। अभी समझो रसगुल्ला, मिठाई चीजें बहुत अच्छा चीजें खाने में आनंद आता है, लेकिन वो जो मधुमेह का रोगी है डायबिटीज के लिए, उसको तो उसके लिए आनंद का विषय वस्तु नहीं है। अगर वस्तु में अगर आनंद होता था तो सबके लिए होना चाहिए, तो एक के लिए क्यों? वो दुख का कारण है, एक सुख का कारण है। अग्नि भी ऐसा है, अभी लोग है ना क्या स्वेटर पहन रहे क्या गर्मी के लिए, अग्नि के पास जाके ताप ले रहे हैं, लेकिन वो गर्मी में थोड़ा जाओ थोड़ा भाई थोड़ा हमारे लिए थोड़ा रसोई कर दो, प्रभु जी इतना गर्म में आग के पास कौन जाएगा, इसका मतलब वस्तु में आनंद नहीं है। तो वो बोल रहे वस्तु में आनंद नहीं है। फिर उसके बाद आता है सांख्यो, फिर वो बोल रहे अरे ये चेतन क्या है, जड़ चीज क्या है, उसको हमको विश्लेषण करना है। यहां पर जो बोलते ना सांख्य योग का बात आया है, तो फिर उसका उनने विश्लेषण अध्ययन चलते, तो उसमें सांख्य योग में पता चलता है संख्या का गणना करके, वो बोलते जड़ वस्तु अलग है चेतन वस्तु अलग है। इसमें बता रहे हैं उन लोग 24 तत्व का गणना करते हैं, जिसका इससे अध्याय में इसी अध्याय में भगवान ने बता दिए, महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त एवच इंद्रियाणि दशो एकम च पंचो च इंद्रिया गोचारा, ये 24 तत्व से सृष्टि बना हुआ है, लेकिन आत्मा उसका ये प्रभुपाद तात्पर्य बोलेंगे 25वां तत्व है, परमात्मा 26वां तत्व है। उनको पता चलता है जड़ वस्तु अलग है चेतन वस्तु अलग है। तो जब तक ये चेतन फिर परम चेतन वस्तु बोल के एक है, चेतन जब परम चेतन वस्तु से जुड़ेगा तभी सुखी होगा। फिर उसका आगे है पतंजलि, या समझो उसको अष्टांग योग, उसमें पता चलता है फिर भगवान से जुड़ने से हम सुखी होंगे। सही, बहुत सही बात है, लेकिन ये भगवान से जुड़े कैसा? जुड़ने के लिए फिर 8 प्रक्रिया बताया गया है, जुड़ेंगे तो ये शरीर का माध्यम से ही है, इसके लिए उसको फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 प्रक्रिया बताया गया भगवान से जुड़ने का। यम बोलेगा तो कुछ नियम होता है, जो नहीं पालन करेंगे यमराज के पास जाना पड़ेगा, जो नहीं करना है। नियम बोलेगा तो क्या करना है, फिर आपको शरीर है ना, भगवान का हम भी भजन करने के लिए सेवा करने के लिए शरीर का माध्यम से भगवान का सेवा कर सकते हो, तो यह शरीर बहुत उपयोगी है। उसको ठीक रखने के लिए कुछ आसन है, आसन से ठीक आसन है ना, मयूर आसन भ्रुजंग आसन सब आसन क्या क्या आसन है सब, वो आसन। आसन के बाद फिर प्राणायाम है, प्राणायाम बोले तो हमारा शरीर में है ना भगवान की ऐसा व्यवस्था है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने से हमारा अग्नि जलता है, अग्नि जलने से वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, उसको इंग्लिश में टॉक्सिन बोलते हैं, हिंदी में दूषित वायु बोलते हैं, वो सब बाहर निकलना है, उसको बोलते हैं प्राणायाम। सवेरे करते हैं ना क्या अनुलोम विलोम कपाल भाति भद्रिका भस्मिका, ये सब दूषित वायु को बाहर निकलने के लिए। फिर वो दूषित वायु निकल जाएगा, आप आसन करके शरीर फिट हो जाएगा ना, तभी आप भजन अच्छा से कर सकते हैं। उसके बाद धारणा, धारणा बोलेगा तो भगवान के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्या किसको ध्यान करोगे, धारणा होना चाहिए। धारणा बोलेगा तो अनुमान होना चाहिए, अभी मैं बोलूंगा तुम फिलीपाइनेस का प्रधानमंत्री का ध्यान करो, फिलीपाइनेस का कौन जानता है, कौन हाथ करो ऊपर करो, कौन जानता है उसका प्रधानमंत्री कौन है, हाथ करो फिलीपाइनेस का प्रधानमंत्री कोई जानता है, क्या नाम है उसका, जानते नहीं तो क्या ध्यान करोगे, तो उसके बारे में जानना आवश्यक है ना। इसके लिए धारणा का अर्थ है जानकारी करना। फिर बोलते भगवान के बारे में जानकारी करो, जब भी भगवान में जानकारी होगा उसके बारे में ध्यान करो, और जब ध्यान अनवरत होगा तो बोलता है उसको समाधि बोलते हैं। फिर उसके बाद जो दर्शन है उसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा या वेदांत सूत्र, उसमें व्यवस्थित रूप से भागवतम जिसको बोलते हैं बताया गया है भगवान महान है इस, और उनका शरण लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसको बोलते हैं षड दर्शन। तो यहां पर बोलते हैं कुछ लोग ये सांख्य योग का अवलंबन करके भगवान से जुड़ते हैं, कुछ लोग ये अष्टांग योग का अवलंबन करके जुड़ते हैं, कोई ज्ञान प्राप्त करके जुड़ते हैं। प्रक्रिया अलग अलग है भगवान से जुड़ने का, लेकिन सही प्रक्रिया होना चाहिए। गलत प्रक्रिया होगा दिल्ली के जगह चला जाएगा चेन्नई, थोड़ा ध्यान से अवलंबन करना है। ओ महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का बीच में संवाद है, यक्ष ने 100 प्रश्न पूछा था, उसमें से जो शेष 4 प्रश्न है उनने पूछा था किम आश्चर्यम को पंथा को मोदितो किम वार्ताहा। वो को पंथा बोलेगा तो कौन सा मार्ग है
जिससे अवलंबन करके हम भगवत धाम तक जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया, मैं भूल गया श्लोक जाने, उसमें बताया कि मत्तोना भिन्नम धर्मस्य तेस्तो विनिहितम् ज्ञो महाजनेन गतास्य पन्था श्रुतया विभिन्न, ऐसा श्लोक है। वो बोल रहे शास्त्र बहुत है, मुनि लोग का सब अलग अलग मत है, इसके लिए उनका अवलंबन करके आपको रास्ता क्या पता नहीं चलेगा। जो पूर्ववर्ती आचार्य लोग जिस रास्ता का अवलंबन करके भगवत तक पहुंच गए हैं, उसी रास्ता का अवलंबन करके जा सकते हैं। इसके लिए जो क्या पंथा है सही सही ढंग से जानना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कुछ व्यक्तिगत प्रश्न है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, समय अधिक हो गया। हरे कृष्णा।